क्या घर के परदेश। कहते हैं यम राजा का राज कठिन है ना छोड़े राजा रानी नु, ये ना बख्शा किसे ने, ते राजा हो ते रंक हो। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आए हुए हंस को ये मार नहीं सकता, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। पुण्यात्माओं आप बिल्कुल बालक हो भक्ति मार्ग में, आप जी को परमात्मा की महिमा का परमात्मा की परिभाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं। आप जी लोक वेद के आधार से ही कोई भैरव को भगवान मान रहा है, कोई हनुमान जी को, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा को, कोई देवी को। फिर उन भगवानों का ठिकाना और उनसे कुछ लाभ लेने के स्थान कहां मान रखे हैं, किसी ने मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी ने चर्च और गुरुद्वारों में। पुण्यात्माओं कोई भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हैं या कोई अन्य कोई यादगारे हैं, जैसे अमरनाथ केदारनाथ और जैसे वैष्णो देवी, ये केवल यादगारे हैं। वहां पर वो शक्ति नहीं है जिसकी वो याद दिलाते हैं, हमने चाहिए वो वस्तु वो शक्ति। जैसे कोई वैद्य था वैद्य, और वो वैद्य बहुत ही अच्छा था, नब्ज देखकर रोग की पहचान बता जान लेता था, बड़ी अच्छी जड़ी बूटी देकर स्वस्थ कर देता था, वेल नोन हो रहा था। फिर उसकी मृत्यु होगी, और यदि मृत्यु के उपरांत उसकी स्टेच्यू बनाकर मूर्ति बनाकर मंदिर बना दिया उसके ऊपर, वो तो उसकी यादगार है कि ये भूल ना पड़े कि ऐसा महापुरुष था। अच्छी बात, अगर ऐसी बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी याद बनी रहे कि ऐसा वैद्य था, ऐसे औषधि देता था। अब वो उस मूर्ति के सामने जाकर के कोई व्यक्ति कोई रोगी अर्ज करे कि हे वैद्य जी मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, ले तेरा 5 रुपये चढ़ा दूं, तो क्या वो मूर्ति स्वस्थ कर सकती है? नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा अपने, कहीं पर वो दवाई दे रहा हो, नब्ज देख रहा हो, तो तब आपका रोग नाश होगा। पुण्यात्माओं समझदार को संकेत बहुत होता है, कहीं पर भगवान विष्णु का मंदिर है, कहीं पर भगवान शंकर जी का मंदिर है, कहीं पर माता दुर्गा का मंदिर है, और कहीं पर अन्य महापुरुषों और देवों का मंदिर, यानी उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, चित्र लगे हैं, स्वरूप लगे हैं। उनके स्वरूप हैं और वो स्वरूप हमें याद दिलाते हैं कि ये महापुरुष ये भगवान कितनी शक्ति युक्त है और ये क्या लाभ देता है। लेकिन उन मूर्तियों के सामने उस वैद्य की तरह प्रार्थना करने से वो भगवान वहां आपको कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर कहते हैं पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले है जिन सारे सब काम। पुण्यात्माओं जैसे इस अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे एक कथा है। के माता पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, वो मर रही थी, फिर कहीं जन्म लेती थी और भगवान शिव से ही उसका विवाह होता आ रहा था। 108वां जन्म था पार्वती जी का, उसमें एक दिन उधर से भगवान शिव जी क्या करते थे, वो पार्वती जी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, उनकी मृत्यु के उपरांत वो उनके कंकाल को, उनके सिर को निकाल लेते थे और उनके प्रेम में उसकी याद को ताजा रखने के लिए एक माला बना ली थी, गले में डाल लेते थे और या अपने कहीं मकान, अपने महल की खुट्टी पर टांग देते थे, उनकी याद में रोते रहते थे। एक दिन नारद जी आए, पार्वती जी से कहा कि हे माता, आप जन्म और मृत्यु के कष्ट से कितने दुखी होते हो, भगवान शंकर जी के पास, शिव जी के पास एक अमर मंत्र है, यदि वो आपको वो मंत्र दे दे जाप करने का, एक नाम है, आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकता है। पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषि जी, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि भगवान शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति हैं, और इनके स्वभाव और इनके उद्धार स्वभाव से मैं खूब परिचित हूं, ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और वस्तु का तो कहना ही क्या। फिर आप ये कहो कि इनके पास कोई ऐसी वस्तु है और वो मुझे नहीं देते, नहीं दी आज तक, मेरे से छुपा ली, मेरा बात जची नहीं, और मेरी जन्म मृत्यु का भी मुझे ज्ञान नहीं। तब भगवान नारद जी ने कहा कि माता, ये जितने भी गले में भगवान ने ये शीश, ये रूंड टांग रखे हैं, तेरे खोपड़े, ये तेरे ही हैं। 107 तो ये टंगरे खुट्टी पे और 108 मां आप वर्तमान में है, और भगवान शिव जी के पास एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आपको देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी ने फिर वही शब्द दोहराए कि नारद जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों नहीं दिया जिससे मेरा मोक्ष हो सकता है, ऐसा भगवान नहीं कर सकते, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आप उनको केवल पति मान रहे हो, आपने उनको भगवान नहीं माना, आपने उनको गुरु नहीं माना, जब तक आप अधीन नहीं होगे तब तक वो आपको ये वस्तु नहीं देंगे। अभी तक तो आप उनको एक पति मानते हो और कभी कभी डांट भी लगा देते हो, और इस अनमोल वस्तु को लेने के लिए आपने बहुत विनम्र स्वभाव अपनाना होगा। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहना वो अकथ कहानी, ये नियम है भक्ति का। अब नारद जी के उस प्रेरणा से उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरित होगी, सोचने लगी कि ऐसा अनमोल मंत्र उनके पास है, नारद जी झूठ नहीं बोलते, इनका कोई स्वार्थ नहीं झूठ बोलने का, परमार्थी व्यक्ति है, ये झूठ नहीं बोलते। अवश्य मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही होगी पुण्यात्मा, जब तक हम अपनी त्रुटि नहीं खोजते तब तक हम निर्मल नहीं हो सकते। हम दूसरों के दोषों को तो दूर से देख लेते हैं, दोष नहीं है तो भी हम अपने दोषों के कारण ही उसमें भी वो दोष देख सकते हैं, देख लेते हैं। जब तक हम अपनी त्रुटियों को नहीं देखेंगे तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे। पार्वती जी ने सोचा कि अवश्य में मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही है जिस कारण से प्रभु ने अभी तक मुझसे ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। अब शाम के समय जब भगवान शिव जी अपने घर लौटे तो पहले तो आते ही जैसे पत्नी जैसा ही व्यवहार किया करती थी, आज बहुत देर से आए जी, कहां थे अभी तक, इस तरह की सौ बातें होती हैं। ये अंडरस्टूड आप जी को पति और पत्नी का कैसा व्यवहार रहता है। उस दिन एक विशेष परिवर्तन देखा शिव जी ने कि पार्वती जी उनके चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती तेरे को किसने क्या कह दिया, मुझे बता उसका, अभी ठीक करता हूं उसको। पार्वती जी ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन कह सकता है प्रभु, लेकिन मुझ अबला से कोई भूल बनी है, हे परमात्मा आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मैं जब मरती थी आप दुखी नहीं हुए होंगे। अब नारद जी उसने शिव शंकर भगवान ने सोचा आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ये तो कदे ढंग से बात नहीं कराया करती, आज ये बोल क्या रही है। तब ना कहा पार्वती जी ने संक्षिप्त में सारी कथा सुना दी है, भगवान आपके पास अनमोल मंत्र है, मैं 107 बार मर चुकी हूं, ये शीश मेरे ही हैं, आपने कभी नहीं बताया, मेरे में कोई त्रुटि रही होगी, मुझे बालक समझकर माफ कर दो, मुझे वो मंत्र दे दो। हाँ भगवान शंकर बोले पार्वती ये तेरे सतर की बात नहीं, हो बता तेरे को कौन मिला, ऐसा भगवान आत्मा तेरी बुद्धि बदल दी उसने, ऐसा कौन विधाता मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी, किसने बताया तेरे दी बात। तो पार्वती कहने लगी नारद जी आए थे और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई। अब शिव जी कहने लगे पार्वती अब बैठ जा, तेरे को सारी मेरी मजबूरियां बताता हूं, और आप कहते हो कि आपकी मृत्यु से मैं क्या दुखी नहीं हुआ होगा। एक बार राजा दक्ष के घर पर पार्वती अपने पिता के घर पर हवन कुंड में जल कर मर गई थी, उसके कंकाल को लिए हुए उस जले हुए शेष शरीर को लिए हुए हड्डों को कंकाल को भगवान शंकर जी 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करता हुआ पागलों की तरह घूमते रहे। फिर भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो मोहवश अंधे हो गए हैं, हड्डों को लिए फिर रहे हैं, सुदर्शन चक्र से पार्वती जी के उन कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए, जहां पर धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी का मंदिर बना दिया गया, जहां पर आंखों का हिस्सा गिरा वहां पर नैना देवी मंदिर बन गया, इस प्रकार से वो यादगारें बनाई गई। वैष्णो देवी के जो बनी हुई है वहां दुर्गा माता नहीं है, वहां वैष्णो नहीं है, वो तो एक स्थान है जहां पर ये यादगार बनाई गई थी कि आने वाले समय में इन सत्य कथाओं को कोई झुठला ना दे। और यहाँ ये एक व्यक्ति छोड़ दिया गया था कि भी कोई आ उसको बताना ऐसे ऐसे यहाँ घटना घटी थी। अब वह पूजा शुरू होगी, वैष्णो देवी होगी। ऐसे ही जितने भी मंदिर बने हुए यादगारे हैं वहां पर वो वस्तु वो शक्ति नहीं है जिसके लिए आप वहां जाते हैं। समझदार को संकेत बहुत है। अब बात चल रही है अमरनाथ कैसे बना। अब पार्वती से शंकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था, तू मर जाती थी, तेरी मृत्यु होती थी, मैं बहुत रोता था, टक्कर मारता रहता था तेरे वियोग में। तो पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, और साथ में ये भी शंकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे, ये जो टांग रखे हमने, तेरे सिरों की माला बना रखी है, जब तक तू दोबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इनको देख देख कर रोता रहता था। तो पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे मैं अमर हो सकती हूँ, और वो क्यों ना दिया आपने भगवान, मैं मरती ही नहीं, आप इतने कष्ट उठाए आपने। पुणात्मा, जो व्यक्ति अपने प्रोसेस से परिचित होता है, अपने प्रोफेशन से परिचित होता है, वो समझता उसके कदर और वैल्यू को। ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अभी तक तेरी आत्मा में इस मंत्र की चाह नहीं बनी थी, इच्छा नहीं बनी थी, प्रबल इच्छा, और जब तक इच्छा ना बने तो मैं तुझे बहुत कोशिश करता था, आपका याद भी होगी, मैं बहुत बार चलता चलाता था कि पार्वती भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति से जीव का कल्याण होता है, लेकिन आप तो मेरी एक नहीं सुनती थी और क्या कह देती थी कि मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, मुझे तो भगवान मिल गया। मैं भी चुप हो जाता था कि अब या आगे बात सुने नहीं। तो पार्वती, तो यहां क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर देव जी, ये सब कथाएं हमें सुनाने के लिए, और निष्कर्ष क्या निकाल कर देते हैं उसको सुनोगे तब आपकी आत्मा गदगद होगी। ये कथाएं तो आपने सुन रखी है लेकिन तत् नहीं निकाल पाया कोई संत, कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास पे कृपा हुई है। तो जब तक हमें तत् नहीं मिलेगा, जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, बनानी हम नाती नहीं, जड़ी रखी है, उनको बनाने की विधि हमें ज्ञान नहीं, खाने की ज्ञान नहीं, तो उनका क्या फायदा रखी हुई का। तो ये कथाएं जो है ये जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग रखी है, वैसे जड़ी है, इनको बनाकर औषधि बनाई जाती है। तो पुणात्माओं, जैसे समुद्र के अंदर, समंदर में सीप होती है एक, जिसमें ये मोती बनते हैं, आपने देखे होंगे शंख ले से व्या करें शंख इन, ये तो ऐसा ही एक चपटा सा होता है, एक जीव होता है, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है, और उसमें मोती कैसे बनता है, वो सीप जिस समय उसको चाह होती है, समुद्र में एक विशेष गर्मी पैदा होती है, और उसके बाद फिर कुछ वर्षा के आसार बनते हैं। तो सीप जो है समुद्र में रहती है और ऊपर सतह पर आ जाती है, जब उसने मोती बनाना, जब उसमें मोती बनने की प्रक्रिया, उसके अंदर एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाह होते अपने आप उसका मुंह खुल जाता है। और ऊपर खुले हुए मुंह खुला हो, ऊपर से वर्षा हो जाती है स्वाति यानी आसमान की, बादलों की, तो उससे वो थोड़ा सा नीर ग्रहण करके और मुंह बंद कर लेती है, उससे मोती बनता है। और उस सीप का मुंह खुलाना हो चाहे सारा सामन बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि पार्वती के अंतःकरण रूपी सीप का मुंह बंद था, नारद जी की प्रेरणा से वो मुंह खुल गया और भगवान शिव जी ने फिर उसमें वो मंत्र डाल दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि पहले तेरी इच्छा नहीं थी और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, मैं तुझे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं तुझे दे भी देता, बता भी देता तो तेरे जगह साथी नहीं, यो काम नहीं करता, ये व्यर्थ जाता है। तो तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज तेरे सीप का मुंह खुल गया, खुला है ये, और अब ये मंत्र दूंगा तुझे, पर ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ऐसे स्थान पर दूंगा जहां कोई दूसरा जीव भी ना सुन ले, जहां पर अमरनाथ बना हुआ है वहां एक सूखा वृक्ष था, एक सूखा वृक्ष था, कोई पत्ता नहीं था, टहनी शेष थी, और वहां जाकर उसके नीचे बैठ के भगवान शंकर और पार्वती, भगवान शिव जी ने हाथ से तीन ऐसी जोर जोर से ताली बजाई, इतनी आवाज हुई कि आसपास, इतना भयंकर नाद हुआ कि आसपास के कोई पक्षी वहां पर था वो उड़कर भाग गया, और कहीं अंडे पीछे आसपास के वृक्षों में वो भी पक्षी बनकर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगर में, उसी वृक्ष की खोगर में एक थोथे स्थान पर में जो वृक्षों में हो जाता है, उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, जो स्वस्थ अंडे थे वो तो पक्षी बनकर उड़ गए, एक गंदा अंडा था वो शेष रह गया। भगवान शिव पार्वती जी को वो मंत्र सुनाने लगा, पुण्यात्माओं आपको पता चलेगा आप कितने पुण्यवान हो, वो जो मंत्र पार्वती जी को मिला वो मंत्र आप जी को मिल रहा है, इसके बीच में ये किसी को ना मिला, केवल कबीर परमेश्वर जी ने कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया था, उनसे भी कह दिया था कि इसको अभी गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूत इन मंत्रों को ग्रहण करके मेरी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर देंगे। अब यहाँ एक प्रश्न और है कि ऐसे स्थान पर मंत्र क्यों दिया भगवान शिव ने, और इसको गुप्त क्यों देते हैं? ये ऐसा मंत्र है, यदि जैसे ऐसे वैसे व्यक्ति को मिल जावे वो इसका जाप साधना करके सिद्धि युक्त हो जाता है, और फिर वो ना जाने कितने जीवों को दुखदाई हो जाता है। पहले ये राक्षस क्यों बने? ये सभी भक्त थे, साधनाएं करते थे, गुरु होते थे, ये साधनाएं करते रहे लेकिन साथ में त्रुटियां भी करते रहे, नाम से खंडित हो गए, गुरुजनों ने उनको अपने वहां से निष्कासित कर दिया, उनके अंदर उस नाम के जाप करते रहे सिद्धियां आ गई, उन्हीं भक्तों को के शत्रु बन गए, उनके पास भी सिद्धियां, उनके पास भी सिद्धियां, सारी उम्र लड़ते रहे, ना उनको भक्ति आपकी ना करने देते थे। आपने सुर असुरों का युद्ध खूब सुना पुराणों में, बढ़ा दी है। और अधिकारी जो होता है उसके मुख से सुना हुआ ज्यादा असर करता है। तो वहां पार्वती जी को भगवान शिव ने वो मंत्र दिया। अब जो ही वो पार्वती जी को भगवान शिव जी कमलों की सती थी बता रहे थे कि मूल कमल में गणेश जी का वास है, हमारा ये शरीर कबीर परमेश्वर जी ने ये सब ज्ञान हमें दे रखा है, उसी का कुछ आंशिक ज्ञान शिव जी को था क्योंकि उनको भी परमात्मा आकर मिले थे, उनको ज्ञान दिया था। तो हमारा ये जो बॉडी है शरीर है प्रत्येक प्राणी मनुष्य का स्त्री या पुरुष का, तो इसके अंदर चैनल लगे हुए चैनल है, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते, उसके अंदर की साइड में एक बहुत ही सूक्ष्म वस्तुएं बनी हुई है, छोटी छोटी नाड़ियां हैं, आंतरी सी है, और जहां ये नीचे गुदा के पास जाकर के एंड होता है बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का, उससे दो उंगल ऊपर अंदर की तरफ एक कमल बना हुआ है गणेश जी उस वाला चैनल समझ लो, उसमें चार पंखड़ी है, लाल रंग है, और उसका एक मंत्र है जो आपको दिया जाता है, इस मंत्र के प्रभाव से उसके अंदर इस मंत्र से वो कमल चारज होता है, और चारज होने से फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी आंतड़ी सी है वो धीरे धीरे उनके अंदर वो उकसने लगती है, जैसे ब्लेंडर में हवा भरते हैं फिर धीरे धीरे फूल जाता है, और पहले वो चिपका होता है। तो भक्तिहीन प्राणी के ये सभी यानी चैनलों के कमलों के ये सभी कमल जो है ब्लेंडर की तरह खाली हो चुके हैं, पहले जन्मदिन मंत्र में कुछ भक्ति की थी वो सब समाप्त कर चुके हो, तो इस मंत्र से ये भर जाता है, दोबारा चार्ज होता है, इसमें हवा से भर जाती है, ये चार्ज हो जाता है। तो बताया कि मूल कमल फिर उससे दो उंगल ऊपर स्वाद चक्र है जहां सावित्री और ब्रह्मा जी का वो चैनल बोला जाता है कमल है। अपुनात्मा जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है स्टूडियो में, उस चैनल के उसके टीवी चैनल के अपने कार्यालय में, और वहां से टीवी में दिख रहा है, ऐसे ही जैसे भगवान जैसे श्री गणेश जी के लोक में जो भी क्रिया कार्य हो रहा है उसको आप गणेश जी वाले चैनल को ऑन करके उसमें देख सकते हो। ऐसे ही सावित्री ब्रह्मा जी का एक लोक है जहां वो रहते हैं, उसमें जो कुछ भी हो रहा है उस के कार्यक्रम को वहां की सब व्यवस्थाओं को आप इस सावित्री ब्रह्मा वाले स्वाद चक्र रूपी चैनल में इसको ऑन करके चार्ज करके इसमें या इसको फुल करके देख सकते हो, ऑन हो जाता है। फिर नाभि कमल है जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक की सारी जो घटनाएं हैं वहां सारा दृश्य वहां देखा जा सकता है, उसका एक मंत्र आपको दिया जाता है। फिर हृदय कमल है, यहाँ पर भगवान शिव के लोक में जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर हम देख सकते हैं जब ये आपका ऑन हो जाएगा। फिर कंठ कमल है, ये कंठ यहाँ तो ये कंठ है, इसके पीछे है ये जहां रीढ़ की हड्डी आकर थोड़ी सी बैंड होती है, इससे पहले यहाँ इस दुर्गा जी का ये कमल है, चैनल है, तो दुर्गा के लोक में जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसको आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद फिर एक दो तल का त्रिकुटी में कमल है, फिर सहस्रार कमल है जहां हम ये हिंदू लोग चोटी रखते हैं। उसका ये कारण तो ये था कि यहाँ पर सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ी वाला, यहाँ पर इस काल भगवान ब्रह्म का निवास है, उसका लोक है, ब्रह्म लोक है। तो जो आप जी को ये मंत्र दिए गए हैं, यही मंत्र 5, ये प्रथम मंत्र में जो 5 मंत्र हैं बीच बीच वाले, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के, ये मंत्र पार्वती जी को भगवान शिव ने उस स्थान पर दिए थे जहां पर अमरनाथ बना दिया गया, अमरनाथ का मंदिर बना हुआ है। अपुन आत्माओं, पार्वती जी को वो मंत्र मिले, तड़फ के साथ वो जाप करने लगी। अब इससे कितना बेनिफिट होगा कि जब तक भगवान शिव की मृत्यु नहीं होगी तब तक पार्वती की भी मृत्यु नहीं होगी, इतना बेनिफिट इसको मिल गया। अब इतना भी बेनिफिट कहां मिला, भगवान शिव से। भगवान शिव ने वो मंत्र उसको कहां दिया, जहां आज अमरनाथ बना हुआ है। अब वही मंत्र अधिकारी व्यक्ति जिसको आदेश है ये नाम देने का, जहां पर भी बैठकर दे दे वही अमरनाथ हो गया। आपके लिए अमरनाथ ये बरुवाला आश्रम है, वो मंदिर अमरनाथ नहीं, वो तो पार्वती के लिए तो था, बाकी तो वहां व्यर्थ में जाते हैं सिर्फ यादगार देखने के लिए। अपना आत्मा जैसे ये दास पहले सत्संग करते थे, नगर नगर में जा करके वहां टेंट लगाते थे और वहां श्रद्धालु भक्त भाई बहन भोजन बनाने के लिए ईंटों की भट्टियां बना लेते थे, चूल्हे बना लेते थे। आप भी भोजन खाते थे, आने वाली संगत के लिए भी प्रसाद बनाते थे, सत्संग होता था, श्रोता सत्संग सुनते थे और जिनको ज्ञान हो जाता था वो उपदेश दीक्षा लेते थे। तो उनके लिए जो जिन्होंने वहां दीक्षा ली उनके लिए वो अमरनाथ था, जहां वो टेंट लग रहा था वो अमरनाथ हो गया, वहां उनको वो अवोग मंत्र मिल गया। अब वहां से हम टेंट उठा करके दूसरे शहर में चले गए, वहां सत्संग किया, पीछे से कोई जाकर के कहता है कि यहाँ महाराज जी ने सत्संग किया था, आजा दिखा के लाऊंगा, और देख यहाँ पट्टी, यहाँ पर हलवा बनाया था, यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ बैठ कर सत्संग किया था और यहाँ नामदान देते थे। अब उसने चाहे 100 बार देखा हो वहां कुछ भी कोई नहीं, ना हलवा मिले ना खीर मिले ना ये सत्संग मिले ना नाम मिले, वो तो वहां मिलेगा जहां फिर ये दास बैठे और सत्संग हो रहा हो और सारा भंडारा साथ हो। तो ऐसे जो ये यादगारे हैं ये तो भट्टी और चूल्हे रह गए, जिनमें कुछ भी कोई ना, केवल एक यादगार है वहां जो कितने चक्कर लगाते रहो, वो वस्तु नहीं मिलेगी जिसके लिए आप वहां जा रहे हो। तो पुणात्मा इस तत्व ज्ञान से आत्मा जागती है, जैसा हमें पहले ज्ञान दिया गया था हमारे पूर्वजों ने उसी को फाइनल मान लिया था, क्योंकि श्रद्धालु विद्यार्थी होता है और मार्गदर्शक जो होता है वो टीचर होता है, गुरु होता है वो टीचर होता है, संत टीचर होता है। अब टीचर विद्यार्थी को जो भी कोई ज्ञान देता है तो विद्यार्थी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो गुरु जी को, वो टीचर को टीचर मानता है, टीचर जो बताता है सही है। तो इन नकली टीचरों ने, इन नकली गुरुओं ने हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे दिया, लोक वेद सुनाकर उनके जीवन बर्बाद करवा दिए, भूत बनवा दिए। अपुणात्मा आपको थोड़ी सी वो अमर वाणी सुनाते हैं जो परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान उसके अंत्यकरण में फीड कर दिया था। इसको सुनकर बड़ा आनंद आता है। शंखों दे धरी तन योनी, नौतत के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लखा न भेवा, भर में पुत्र व्यास सुखदेव। अब सुखदेव ऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई इसका भी इसी से संबंध है। अब जैसे पार्वती जी को मंत्र देने के लिए स्थान सेलेक्ट किया था भगवान शिव ने, एक सूखा वृक्ष तरवर, उसके खोकर में एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। एक अंडा गंदा था, बाकी स्वस्थ थे, वो तो उड़कर चले गए पक्षी बन गए, और एक अंडा जो गंदा था उसी में पड़ा रहा। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये मंत्र सुनाना शुरू कर दिया कि मूल कमल में गणेश जी है, इसका ये जाप कर। भगवान बोल कर सुना रहे थे, शंकर जी पार्वती जी साथ बोल रही थी। फिर कह रहे थे कि दूसरा मंत्र ये बोलो, ये सावित्री ब्रह्मा का मंत्र है, ये जाप ऐसे ऐसे करो। जितनी बार भगवान शिव बोल रहे थे ऐसे पार्वती बहुत एकाग्र चित से सुन और बोल रही थी और कह रही थी हाँ जी आगे चलो, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उनके अंदर इतना गंद नहीं भरा था, उनका तुरंत वो चैनल ऑन होते चले गए। पूर्व के संस्कार भी साथ काम करते हैं। ना भी कमल में बताया कि यहाँ पर इस मंत्र का जाप कर, यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। हाँ जी वो ऐसे हाँ कर रही थी, हूँ कर रही थी। कुछ देर में क्या हुआ, पार्वती जी की आत्मा एक चैनल में घुस गई। अपने आत्मा आपने देखा होगा, ये ऋषि जो रोग हजारों वर्ष बैठे रहा करते थे, ये मन टिकन ना दे, प्राणी ने 10 मिनट आप भक्ति करते हो, मंत्र करते हो, 10 मिनट भी ना टिकन देता, कभी इधर भागता, कोई ऐसी बात या जो आ जाएगा छोड़ मंत्र, था मोटरसाइकिल उड़ा जाओ खड़ा हो मनवाने। तो ये बैठे क्यों रहते थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार इनके अच्छे थे, तो ये जो साधना करने लगते थे इनका पूर्व संस्कार से कोई चैनल ऑन हो जाता। जैसे किसी भी ब्रह्मा जी का हो गया या गणेश जी का हो गया या शिव जी विष्णु जी वाला हो गया, तो वो क्या होता था कि उसमें ये आत्मा चली जाती थी, वहां देख ऊपर के लोगों में तो विघ्न है, यहाँ तो एक सिनेमा देखते हैं 3 घंटे, आप जाते हो भूल जाते हो सब कुछ, और 3 घंटे ऐसे होते जानो 3 मिनट होगी, आंख पाड़े देखेगा नाचा कूदी बकवाद। तो ऐसे ही ऊपर के लोगों में उन ऋषियों को पता नहीं था तू किन धक्के खा रहा है, वो देखो किधर अप्सराएं नाच रही है, जैसे स्वप्न सा होता है, समाधि हो जाती है इनकी, समाधि उसको कहते हैं, समाधि लग गई इसकी, और वो देखा ऊपर सांग समाधि टट्टू लग गई थी। तो वहां आत्मा जाती है उस लोक में घुस गई चैनल के माध्यम से, तो वहां कई औरतें नाच रही हैं, कई झरने बह रही हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आतिशबाजी छूट रही है, तो ये देखता रहता है अंदर। तो इस कारण से वो हजारों वर्ष बैठे रहते थे, उस बैठने से उनका तप हो जाता था। और तप से सिद्धियां आ जाती थी, उन सिद्धियों से वो आंडी पाक गए, एक दूसरे ने किसी ने दुख दे दे, किसी ने सुख दे दे अपनी कमाई तक, ऐसे होता रहता। ऐसे ही पार्वती जी का जो आत्मा थी वो चैनल में घुस गई और उसने नहीं पता कि शंकर जी के बोल रहे हैं। उधर से क्या देखा भगवान शिव ने कि पार्वती जी तो समाधिस्थ होगी और वृक्ष के अंदर से एक आवाज आ रही है हाँ हाँ हाँ। तो भगवान शिव ने देखा जानते हैं, तो भगवान कबीर परमेश्वर जी ने ये ज्ञान दिया है अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, उन्होंने फिर ये हमें बताया है। क्या बताया कि वो गंदा अंडा जो था वो स्वस्थ हो गया और उस भगवान शिव जी के मंत्र के प्रभाव से, जैसे वो बोल रहे थे कि पार्वती को कह रहे थे बोल चार बार ऐसे ऐसे, तो उस मंत्र में और एक अधिकारी संत के मुख से सुनकर उसका बहुत असर बनता है, जीव जंतुओं पर भी बनता है। तो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होकर उसमें बच्चा बन गया इतने ही मंत्र से, और वो तोते का बच्चा ओंकारे वरण लग गया पार्वती के स्थान पर। तो भगवान शिव ने सोचा कि ये जीव, इस जीव ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये कितना बता देगा, इसको मारूंगा। इस उद्देश्य से उसको पकड़ना चाहा तो उसको विचारित हो गया था, वो पक्षी आकाश में उड़कर बहुत तेजी से भाग लिया, पीछे भगवान शिव जी पार्वती वहां बैठी समाधि लाए। आगे वेद व्यास जी की पत्नी बैठी थी, उसने जमाई ली, पक्षी का शरीर छोड़कर वो आत्मा वेद व्यास की पत्नी के पेट में चला गया, शरीर में जमाई के माध्यम से पेट मुख से, और समय आने पर फिर वो संयोग हुआ उसका, फिर अंदर वो गर्भ में बालक बना, फिर सुखदेव रूप में वो महर्षि प्रसिद्ध हुआ जन्मा। अपुनात्मा जैसे ये हमारे एक बीमारी ला रखी है नकली गुरुओं ने, कि जैसे आप जी का कोई भी घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके शरीर को सभा करने के उपरांत, अंतिम संस्कार करने के उपरांत उसकी अस्थियों को गंगा में डालकर आना कंपल्सरी बना रखे है। क्यों बना रखे है, किस लिए? और ये कहते हैं तेरे पिता की गति नहीं होगी, तेरी मां की गति नहीं होगी यदि वहां नहीं डाल का होगा, वहां फिर और ठग बैठे। यहाँ के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन दे ले और वहां बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने, वह न्यारे चार्ज करें। अपने आत्माओं ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अब क्या होता, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, अब एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ना जी ना करता और इस मकान में तो यू अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इसमें इस मकान में तो यू कई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को यह छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है, प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है दाते इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, यो भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घरवाले उनको फूक फाक कर फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता वो प्रेत बनकर। ये घरवाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं वो सुना नहीं सकता, वो वहां धक्के खाकर फिर देखता मेरा शरीर कहाँ है, वो जाता शमशान घाट पे। तो इतना उसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है ये नहीं है, तो अगर वहां उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, यो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता मेरा है, यो मेरा नुटकती चिपट जाए उसका। और ये शब्द ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंतर से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदायी हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां उठाकर तुम वहां डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहां ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसको हाथ ना लगे, वो चपके नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था, वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था, वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकीते ठाकर डाले जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की, उसी आधार से सुखदेव वाली आत्मा का संस्कार ऐसा था कि उसने गंदे अंडे में ही ऐसे उसका अंडा नष्ट हो गया और उसका वो चिपका रहा अपना जान के, मेरा है मेरा है, यह वृत्ति है हमारी अपना आत्मा। जैसे बच्चा गर्भ में आते ही माता को अपनापन हो जाता है और किसी कारण से वो गर्भपात हो जाता है तो बहुत रोती है कि मेरा था मेरा था। ऐसे ही उस अंडे को गंदा होने पर भी उसने अपना मान रखा था, चिपका बैठी थी आत्मा मेरे, उसका संस्कार ऐसा था। और ये सारा कुछ जो होता है पूर्व निर्धारित संस्कारों से ही होता है। जो पार्वती जी को मंत्र मिला ये भी पूर्व संस्कार थे इसके और पूर्व निर्धारित था। अब केवल कबीर परमेश्वर ही उसको परिवर्तन कर सकता है और किसी पर परिवर्तन नहीं होना। तो ये सारा कुछ हुआ तो पूर्व संस्कार से, लेकिन घटना ऐसे घटी हो तो वो अंडे को जो चिपका पर बैठा था वो सुखदेव वाली आत्मा, इसी प्रकार जो ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय ये उल्टा आ गया तो वहां शमशान घाट पर बैठा रहेगा। और आपने देखा होगा कि भी कई क्या कहा करते थे कि भी ये लड़का वहां जा रहा था और इसकी ठोकर लगी किसी का, किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहे उसके अपने अस्थि के और उसका ठोकर लगी, फिर ये चौधरी था फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसके अंडी बनाते लकड़ता ही नहीं, फिर गधा बन गया है। तो वहां उनको दुखदाई देता रोता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहाँ से फेंक दो कितना, यो एक स्थान पर ना चिपका रहा, अड्डे ना धक्के खानता की तोड़ धक्के खा लेगा, बाहर चला जाएगा, ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना ताप ना भूत बनना, ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता। और आपने ये नाम ले रखा था, कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ चौराहे पर गांडो तुम और बर्फी खाते हुए, आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनके जमीन ज्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी और बहन का बेटे जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंडी बना रखी थी और कोई वहां पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बड़ा, वो चढ़ा गया वहां उस वो को पीर प्यार था, पीर की मड़ी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब उस गया वहां तालाब में तो मैंने देखा इतना गुड़ बहुत सुंदर, मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया, कुछ कूट छेद कर बैलों को खिला दिया, सारे डाल दिया। और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का, आपके परमात्मा की शरण आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दो पैर के समय वहां बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3-1 फुट का आदमी, सफेद दाढ़ी सफेद कपड़े और नो आखन लाल कर रहा, कहने लगा तू ठाडे की शरण में था ना, तेरा बक्कलता रू उतने मेरा गुड़ खा दिया, तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया ना, तेरा बक्कल तारू तेने मेरा गुड़ खा लिया। ये भूत बेटी के बाप खावे कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है बस दर्द्याड़ मेरा हो गया भी। तो पुण्यात्मा आप समृत की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं। अब यहां वाणी सुनाते हैं परमात्मा की, सुखदेव सतगुरु मिले महादेव बंका, 84 की मिटी निशंका, 78 जन्म गौर गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई, अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर भया नहीं भोरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना, सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाही, पिंड पर धान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी, रुंड माला शिव गले, गिरजा के सरसी ही सी, भक्ति दुराई देव को ना परचा जगदीश, तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंड माला, बहुतक पर ले हो जाई, लंबी उम्र शिव कल के माही, कलयुग के माही, दीर्घ आयु है शिव शिव अनरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प हुए तेरी काया, महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंदन कर शीश नमावो, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ, शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूं गौरी माता। अब यहां गरीबदास साहिब जी ये जो वाणी बोल रहे हैं, ये जो नारद ने बोली वो बोल रहे हैं, ये ना समझा समझ लेना आपके इसमें लिखा है कि शिव जी देव उनके देव है, नहीं, ये नारद जी की बुद्धि के सतर से बता रहे कि वो भगवान शंकर को देवन पति देव मान रहा था, सबका मालिक। चरण गहो चिंता मणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा, कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेशी जी न्या, जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा, चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंड वाला, मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुमरी सेवा, मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी, मैं अबला हूं बाला भोरी, पार निभावो हमरी डोरी, पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गौराओ, मूल मंत्र मैं बूबे का ईश सुनावो मोही, जुगन जुगन पातक छूटे हैं छूटत हैं दिल द्रोही, बोल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता, ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा, गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी, नारद मुनि उपदेश समोदम, ज्ञान ध्यान दीना ज्ञान ध्यान परमोदम, अब यहाँ जब पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगी, तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं, शीश पकड़ सुन देवी माता को उपदेशी मिला विधाता। पार्वती के सिर को छूकर भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी बात सुनो देवी, ऐसा कौन भगवान मिल गया तुझे आज तेरी ऐसी बुद्धि बदल दी। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आदि घन नामी। नारद मुनि उपदेश बखान सुमोदम, मेरे को नारद जी ने ये सारी बात बता दी। और दीन ज्ञान ध्यान परमोदम, अपुनात्माओं क्या बताते हैं भगवान शिव जी, बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमारी वाणी। के चलो जंगल में चलेंगे, बनखंड में ऐसे स्थान पर बैठेंगे कोई पक्षी भी हमारी बात ना सुन ले, हमारी वाणी ना सुने। जहां एक सुख्या तरवरता क्या, शिव को आसन तहां वहां रखा। जहां एक गंध अंड तिस माही, जिस जानत है समर्थ साई। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वाणी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पक्षी नर और नारी। अब क्या बताते हैं, आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सूदा कर भौरा। अब कहते हैं आसन पदम लगा पार्वती, और मेर दंड को, मेरु दंड भी कहते हैं इसी को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को, किसको सीधा कर ऐसे। चंद्र लगन में सूरत समावो लगाओ, सूरत सुर को बंद खमाओ। गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। ये प्रथम कमल है, मूल कमल जिसको बोलते हैं। दूजे स्वाद चक्र को देखो, सेतु वर्ण रंग सूरत विवेको। सठ पंखड़ी प्रीत परिवा, जहां बसते हैं गंधर्व देवा। तो ये सब वो नामों का जानकारी दे रखी इसमें, जो अदास आपको देता है। पार्वती जी को भगवान शिव ने यही मंत्र दिया। अपुनात्माओं अब यहां बताया जा रहा है कि समर्थ पूरा गुरु हो, जिस सत्र का भी हो। जैसे कोई प्राइमरी कक्षा का टीचर है, तो वो भी टीचर पूरा हो। और जैसे कोई मैट्रिक यानी दसवीं तक का कोई अध्यापक है, वो भी अपने सिलेबस से ठीक परिचित हो, वही भला कर सकता है विद्यार्थियों का। तो ऐसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी को प्राइमरी तक का ज्ञान दिया था, इतना ही टीचर थे वे। अब जैसे आपको बताया कि सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज होगी भगवान शिव से मंत्र सुनकर। और तोते में एक आदत होती है, ये नकल बहुत कराया करे। उसने उसके कुछ जाप किए, जिस कारण से उसकी बैटरी चार्ज होगी। और फिर वो मां के गर्भ में रहा 12 वर्ष तक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा। समुद्र से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को चिंता बन गई कि अभी 9 महीने के अंदर बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी है, वो आत्मा है, वो अभी बाहर नहीं आया है और ये तो एक परंपरा बिगड़ जाएगी यदि माता गर्भ में ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती है बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने में ही 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो बहुत परेशानियां हो जाएंगी, परंपरा बिगड़ेगी। तो वहां ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों गए व्यास की पत्नी से कहने लगे यहाँ आपके गर्भ में हमारा एक ज्ञान का चोर आया है उसको। हाँ भगवान शिव गए फिर बाद में कि इन ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप ही ये काम कर सकते हो, उसको निकालो जाके और आप ही के कारण उसने ऐसा शरण मिली है, ऐसी शक्ति मिली है। भगवान शिव वहां गए कि व्यास की पत्नी तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं उसको जान से उसको खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास जी भी आ गए, व्यास जी ने कहा भगवान आओ, धन्यवाद हमारे आपका आगमन हुआ, आप कैसे आए, सारी कहानी बताई कि इसने ऐसे ऐसे मेरा अमर मंत्र सुन लिया, ये अमर हो गया और इसने धोखे से मेरे से ज्ञान सुन लिया और मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, आपका गर्भ नाश करूंगा आपकी पत्नी का। अब उसने कहा व्यास जी ने कि हे भोलेनाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके मंत्र सुनकर इसने जाप कर लिया, जाप से ही अमर हो गया, अमर को आप मारोगे कैसे? अब शिव जी फेल हो गए, कहा भाई बात तो ठीक है। इतने में वो ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए, भाई शिव जी तो हो लिया फ्यूज। तब उन्होंने कहा कि भाई सुखदेव, तीनों आने मिलकर कहा सुखदेव तू बाहर आ जा, सुख माने तोता होता है, ए तोता राम तू बाहर आ जा, क्योंकि तोते के शरीर को छोड़कर उसमें गया था इसलिए इसको सुखदेव कहने लगे। तो सुखदेव ने कहा कि मुझे अब ज्ञान है क्योंकि माँ के गर्भ में इस प्राणी को पिछला पूर्व जन्मों का और आगे क्या होगा इसके संग में सारा ज्ञान होता है। तो सुखदेव गर्भ से बोला कि भगवान मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आते ही आप जी के तीनों के गुण या त्रिगुणमयी माया जीव को मोहित कर देती है, बेहोश कर देती है। अब मुझे सब पता है कि मैं पिछले जन्मों में कितना कष्ट उठाया करता था, भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं फिर बकवाद करके मरता रहा, असंग जन्म हो गए मैंने दुख पाते ने, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है। तुम अपनी एक शर्त पर आ सकता हूं, यदि आप तीनों के तीनों अपनी जो आपके अंदर से निकल रहे एक एक गुण की तरंग इनको कुछ समय के लिए रोक लो। अब उन्होंने कहा भाई ये हमारे बस का भी कोई ना, हम इसको रोक लें, हम केवल एक सांस कुछ देर सेकंड के लिए रोक सकते, सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए, नहीं तो हमारा शरीर पार्ट गया तो बीपी के ऐसा काम है, हम अधिक देर नहीं रोक सकते इस प्रभाव को, हमारे हमें भी मालूम है। तो सुखदेव ने कहा कि ठीक है कुछ सेकंड के लिए रोक दो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां से चले गए, वहां से उन्होंने कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में उसको रोक पाए, इतने में सुखदेव बाहर आ गया, माँ के गर्भ से जन्म बाहर निकल गया। अब व्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी को कुछ पीड़ा हुई, बच्चा होने वाला है, सुखदेव निकला बाहर एकदम 12 वर्ष की आयु का, बाहर आके एकदम शरीर बड़ा हो गया उसका और अपनी ओर नाल कंधे पर डाल लिया और सुंडी का जेर लटका कर जिससे माँ की नाभि से कनेक्शन होता है। व्यास जी कहने लगे बेटा ए पुत्र मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। अब सुखदेव ने देखा भी नहीं अपने माँ और पिता की तरफ, पीछे से ही बोल रहा है कि ऋषि जी एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। कहने लगे ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया व्यास जी, अब मुझे वो याद है, वो ताजा है सारी याद। अब मैं इस बीमारी में पैर ना दूं, ना दर्शन दिखाऊं ना देखूं, हो सकता मेरी ममता में हो जाए, मैं फंस जाऊंगा। जो कहके वहां बैटरी चार्ज थी उसकी आकाश में उड़ गया और कहीं दूर जाकर आप अपनी ओर नाल काट के और कपड़े के अपना पेड़ की छाल लपेट के और लाग गया भक्ति करण। बिना गुरु के और फिर वो चार्ज बैटरी थी उसकी पिछले जन्मों की, उससे आकाश में उड़ने की सिद्धि उसमें आ गई थी। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब पिछले जन्म के संस्कारों वश सुखदेव ऋषि जी ने गुरु की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि उसके अंदर सिद्धि विद्वान थी, पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। अपुनात्मा, आप देखते हो कि किसी गांव में किसी संत का कोई मंदिर आश्रम बना हुआ है, यादगार बनी हुई है, उसकी क्या लीलाएं हैं कि ये संत जी छोटे से थे तभी से इन्होंने ऐसी चमत्कार कर दिए थे, ऐसा कर दिया था, वहां ऐसा कर दिया था। अब वो पिछले जन्म के पुनकर्मी साधक सिद्धि वाले थे, अगले जन्म में वो सिद्धियां कुछ बैटरी चार्ज थी और वो सब खत्म होली, फिर वो क्या बन गए? अब वो वहां भोग लगाते हैं, वो मंदिर में बैठ कर भूत बन गए, वो भूत बन गए। तो ऐसे ही ये सुखदेव ऋषि आकाश में उड़ जाता था, एक कॉमन स्वर्ग है उसमें पहुंच जाता था। वहां गए व्यक्ति कोई आम व्यक्ति तो होता नहीं, तो सब ऋषि महर्षि वहां देवता उसका आदर करते थे, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, देखो यहां आकाश से उड़कर स्वर्ग में आ जाते। इसी धोखे में एक दिन सुखदेव जी विष्णु जी के लोक में चला गया। विष्णु जी के लोक में जब ये पहुंचा तो इसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की, वहां के स्वर्ग में, विष्णु लोक के स्वर्ग में। स्वर्ग क्या चीज है? प्रत्येक शहर में जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, आजकल समझना बहुत आसान है, जैसे प्रत्येक शहर में सरकारी ये बने हुए हैं टूरिज्म, तो वहां केवल अधिकारी ही जा सकता है, अन्य नहीं जा सकता, उनमें रुक नहीं सकता। तो ऐसे उसने जाके अंदर जाना चाहा विष्णु के लोक वाले रेस्टोरेंट में, स्वर्ग में। वहां के नौकरों ने, पहरेदारों ने, पार्षदों ने पूछा, ऋषि जी आपका गुरु कौन है, अर्थात आप कौन से महकमे में अधिकारी हो? तो उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा पार्षदों ने, सेवादारों ने, कि आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में, भगवान विष्णु जी का आदेश है कि जो गुरु नहीं है, जिनका गुरु धारण नहीं कर रखे, हर गुरु भी अधिकारी हो, तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसने जिद कर ली कि तुम अपनी बात बनाते हो, भगवान का आदेश नहीं हो सकता, मैं वहां भी जाता था कोई नहीं रोकता था। उन्होंने कहा जी वहां नहीं रोकते होंगे पर यहाँ रोका जाता है। तो कुछ देर के बाद उसने कहा मुझे विष्णु जी से मिलाओ। हंडी पाक के गया था वो तो न्यू कि भगवान विष्णु मुझे सीने से लगाएंगे और कहेंगे वाह वाह ऋषि, देखो कहां से उड़कर आकाश में उड़ के आ गया। न्यू आना को आम व्यक्ति थोड़ा आ सकता है, उसकी अपनी सोच थी। पार्षदों ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो प्रवेश करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, होटल यानी स्वर्ग में, आपका क्या आदेश है? विष्णु जी ने कहा तुमने रोका क्यों उसको? कि जी उनका कोई गुरु नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर ठीक है, फिर नहीं प्रवेश करने देना। तो पार्षदों ने कहा, पहरेदारों ने कहा, भगवान वो जिद लगाए बैठा है कि मैंने तो प्रवेश होना ही, गुरु विष्णु जी से कहलवा दो जैसे आपकी आज्ञा। विष्णु जी बाहर आए अपने महल से। अब सुखदेव जी ने तो ये सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे, सीने से लाओगे। और भगवान विष्णु ने बाहर आते ही कहा कि ऋषि जी यहां किस लिए आए तुम? पुनात्माओं, सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात करे। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं, तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया? कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? नहीं जी, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहां आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा देश हो गया, तो फाइनल बात है। फिर कहा कि भगवान उस पृथ्वी पर मेरे समान कोई ऋषि नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं? पुण्यात्मा कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर या माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाव या कुआ भांग पड़ी। अब अभिमान उसके अंदर कितना कि मेरे समान कोई नहीं पृथ्वी पर, केवल किस कारण से? एक आकाश में उड़ जाने की हल्दी की गांठ प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके अपने से सबसे सुपीरियर मान बैठा। ये तत्व ज्ञानहीन के कारण, हीनता के कारण होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी यह तेरी और भारी भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है जो भगवान से कोसों दूर करता है। और जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु महल में चले गए। अब सुखदेव जी ने सोचा भाई राजा जनक तो एक गृहस्थी आदमी और राजा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी और ऋषि, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देख लिया आज तक, और उसको मैं प्रणाम करूं मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। अपुण आत्माओं, काल ने तो कई बीमारी ला रखी इस जीव के, तो वो उस वहां से वो चल पड़ा, कहां आ गया? उसी कोमल स्वर्ग में, इंद्र वाले में, वहां आकर पहले वाली रौनक चेहरे पर नहीं थी। अन्य देवताओं ने पूछा भी आज क्या, किस कारण से ये ऋषि जी इतने मायूस हैं? कारण जानना चाहा कि हे ऋषिवर, आपको क्या टेंशन होगी? आप तो बड़े हौसले से आते थे। तब सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और विष्णु जी ने मुझे वहां आदेश, स्वर्ग में रहने का आदेश दे दिया। तो वहां जो उपस्थित देवता लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि जी सच्ची बात बता, कहानी की है, भगवान विष्णु तो सीने से लगाते हैं, सबको प्यार देते हो, तो बहुत नेक आत्मा है, और आपको वहां रहने भी नहीं दिया, बात बता क्या है? तो उसने सारी कहानी बताई कि भाई मैं वहां गया था और मैंने कृष्ण उसमें स्वर्ग में रहने का आग्रह किया था, तो मेरे से कहा कि तुम बिना गुरु के हो और गुरु बनाओ, तब यहां आ सकते हो। तो उन देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि हम तो आपको बड़ा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? कहने लगा सुखदेव बोला नहीं। तो ऋषि कहने लगे, वो फिर इंद्र जी ने कहा कि देखो आज के बाद यहाँ भी मत आना, क्योंकि हम तो आपको सोच रहे थे, तो आप तो बड़े विद्वान पुरुष हो, औरों को ज्ञान देते हो, तो आपको भी आपने गुरु बना रखा होगा। तो कहता है कि सबको कहने लगे, भाई मैं कैसे करूं, भगवान विष्णु जी ने कहा है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले, ज्ञान विवेका हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा, अब अभिमान बताता है कि मैं गृहस्थी आदमी को बाल ब्रह्मचारी हूं मैं तो, और कैसे एक साधु संत ऋषि, क्योंकि वो तो फिर जहां जाए और ऋषि जी और ऋषि जी, वो तो फुलवा भरी थी उसमें अभिमान की, और अभिमान वाला पंचर हुए बिना भगवान मिले नहीं, तो पंचर करना पड़ेगा। तो भगवान ने विष्णु ने उसका पंचर दिया, कर चैतन्य लाभ चाहिए गुरु बना, राजा जनक को बना, वह अधिकारी है आज के दिन। तो उसने सभी वहां बैठे उपस्थित नारद जी ने और भी कई महापुरुषों ने समझाया कि देखो आज आप गुरु नहीं बनाओगे, पिछले जन्म की आपकी भक्ति है ये नष्ट हो जाएगी, अगले जन्म में गधा बनोगे। जब ये कहा कि अगले जन्म में गधा बनोगे, कलेजा हिल गया ऋषि जी का और उसके सिर घूम गया। हमारे अंतःकरण के अंदर पुण्यात्माओं असंख्य जन्मों के संस्कार कोड वर्डों में आपके इस सिम कार्ड में जमा है, आपके जीव के साथ लटक चिपके हुए, और ये फिल्म कभी भी ऑन हो सकती है। जैसे स्वप्न देखते हो पिछले जन्मों के, वो पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसी घाटियों में चले जा, कभी जा ही नहीं सकते, तो पक्षी रूप में कहीं घूमे होंगे, वो भी अंदर जमा है। तो उसको याद आया कि मैं एक सुखदेव को याद आया कि एक जीवन में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मेरे लठ मारे निकाल दिया घर से, मैं चलता चलता पगडंडी ये अटकल सी लगा के जा रहा था, आगे एक छोटा सा नाला था 3-1 फुट का, उसमें गिरने लगा तो जंप लगाना चाहा, उसके बीच में फंस गया, आगे मुंह अट गया, पाछे बैक अट गई, पैर टिके नहीं, लटक गया, पुड़ी बन गई। वहां इक्का दुक्का व्यक्ति आता जाता था, मुझे निकाला नहीं, मेरे ऊपर पैर रखे, पुड़ी बना ली और पैर हो जावे। एक हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मरा, वो बात याद आ गई उसको, उसी समय वहां से चल पड़ा कि गुरु बनाऊंगा। सबसे पहले अपने पिता व्यास जी के पास आया, क्योंकि व्यास जी विद्वान पुरुष थे, माने जाते थे। अपने पुत्र अपने पिता के पास आया कि मैं सुखदेव हूं, आपका पुत्र हूं। तो व्यास जी ने कहा, बेटा आ जा, दुख तो बहुत हुआ तेरे जो वियोग का मुझे, पर मैंने सब्र कर लिया था, मेरा बेटा मोक्ष के लिए गया है, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। कैसे आना हुआ, सारी कहानी बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, विष्णु जी ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, स्वर्ग में अलाउड नहीं किया। व्यास जी ने भी फिर यही प्रश्न किया, क्योंकि विद्वान पुरुष एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कारण था, भगवान ने आपको क्यों वापस कर दिया। तो सुखदेव ने कहा, मैंने गुरु नहीं बना रखा। ऋषि ने माथे हाथ मारा व्यास जी ने कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा बेटा मोक्ष प्राप्त करेगा, मुझे मैंने अपना सब्र कर लिया था, अरे तू तो नरक में जाएगा, पशु यो नहीं पावेगा, नालायक तू काहे का ऋषि है, गुरु क्यों नहीं बनाता। तो फिर उसने बताया कि भगवान ने कहा है विष्णु जी ने कि राजा जनक को गुरु बना ले। राजा जनक तो एक राजा है, उसके तो कई रानियां रखी हैं, औरतें हैं, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं कैसे मत्था टेकूं उसके। गुरु को तो सारे काम करने पड़ेंगे, मत्था भी टेकना पड़ेगा, दंडवत करनी पड़ेगी। सुखदेव फिर व्यास जी ने कहा, बेटा अभिमान त्याग दे, अब तेरा जीवन मुझे नष्ट हुआ दिखाई देता है। यूं कहकर व्यास जी रोने लग गया, रन ना लायक तो किसा जन्म, तो के मनुष्य जीवन पाया तूने, ये पिछले संस्कार है जो तू आकाश में उड़कर लोग दिखावा कर रहा है। गरीबदास साहब जी कबीर परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त से कहते हैं, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई, एक सिद्धि कुछ खावा ना पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे, एक सिद्धि बहुत चोले धारे, एक सिद्धि जीव हंस निहारे। कहते हैं ऐसे ऐसे 24 सिद्धियां भी आ जावे तो भी इनकी तरफ थूका नहीं देखा नहीं, ये तो मोक्ष बाधक है। तब कहा कि जाके और जनक जी से उपदेश ले बेटा, बहुत प्रेरणा की। जब वो निकल, जब चला वो नालायक, अब वहां जाकर पहुंचा, ऋषि के रूप में था, बाल दाढ़ी बढ़ा रखी, एक गोथा सा बांध रखा हुए कि कपड़े का, और कमर बड़ा, सारे शरीर पर धोती जैसे। तो राजा जनक ने आसन लगवा दिया कि आओ ऋषि जी, बड़े धनभाग हमारे, ऋषि जी हमारे घर पर आए हैं तो धनभाग हो, आज कैसी दया हुई, साधु तो संत का राम का रूप होता है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगे, नहीं आसन पर नहीं बैठूंगा मैं, जमीन पर बैठूंगा, दीक्षा लेने आया। तो सुखदेव ऋषि से कहा कि सुबह स्नान करके मैं तने फिर उपदेश दूंगा। एक मकान के अंदर अलग व्यवस्था करवा दी कि वहां सो जाओ आप, सुबह नाम दूंगा तुझे। उसकी सारी दाढ़ा लेना था ना सुखदेव ऋषि का, संत ने, जनक जी ने। वहां पर एक स्त्री की ड्यूटी लगा दी, एक औरत की, एक बहन की, कि गुरु महाराज जी की सेवा करना बेटा, खाना खिलाओ, बर्तन इसके वस्त्र बिछाओ, और कोई असुविधा ना हो। और उसको पता दिया था कि ऐसी क्रिया करना। तो अब सुखदेव ऋषि के लिए पलंग बिछा दिया, आसन लगा दिया, सुखदेव विराजमान हो गए। और वो लड़की भी रात्रि में उसके तकत पर जाकर बैठ गई जिस पर वो विराजमान थे। अब सुखदेव ऋषि जी थोड़ा सा एक फुट आगे को सरक गए, लड़की फिर उसकी तरफ निकट आने लगी, तो वो आगे को चल पड़े और फिर उठ कर खड़े हो गए और कहा, माई आप जाइए, मेरा जो है ना, मैंने मेरा धर्म नष्ट ना कर। वो बाहर आ गई। तो राजा जनक ने सुबह पूछा क्या क्रिया रही, उस लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे ये, मैं निकट जाऊं थी जो आगे नवाजे था, मैं निकट जाऊं थी जो सुकड़ गया, कति पलंग से भी उतर गया। तब राजा जनक स्नान करन लग गए, कहने लगे आप यहां बैठ जाओ, उनका नीचे आसन लगा दिया, वो बैठ गया, सामने बैठा। 10,000 रानियां थी राजा जनक के, 10,000, उनमें से एक हेड थी, मुखिया थी, पटरानी बोलते थे उसको। उसने कहा कि मैं लाऊंगा यहाँ चूल्हा, एक लकड़ी ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ी डाल दी, ऊपर पतीला धर दिया, उबाल दिया पानी, जैसे चाय बनाते समय उबाला करे, और उसके साथ में एक पटड़ा डालकर बैठ के ना स्नान के लिए कपड़े निकाल कर, राजा जनक धोती बांध रखी थी। अपनी पत्नी से जो सबसे मुखिया थी, हेड थी, पटरानी जिसको कहती थी, उससे वो स्नान कराने लगी। उस उबलते हुए जल को लोटे में भरे, राजा जनक की चोटी में गेरे सिर में, रात से नुआवे मछल मछल का, और वो पानी डाला राजा के सिर पे, और सुखदेव ऋषि नो सुकड़े अगदड़ गया। अब उसको ये हो गया कि यू जलेगा राजा, और वो पानी गिरे वो नूक से अकमरेगा, यू इसे जलते पानी वो बढ़ते मनावे। तब राजा जनक ने कहा कि हे व्यास के बेटे, ए महर्षि, ए ब्रह्मचारी, आजा, मेरे स्नान करने के बाद जो मेरे शरीर के बाद जल नीचे गया है गटर में, नाली में, व्यास के बेटा ब्रह्मचारी इसमें उंगली दे दे, तने जान जाऊंगा किसा ब्रह्मचारी किसा तू भगत है, नो वाला मैं ना जो आंगली जल जाए मेरी तय है। राजा बिहंस दई जब तारी, राजा ने नो थाली पीटा, थाली अथेली पीटी ने ताली बजाई रसे और हमें स्नान करावे नारी के तू नो कह था मैंने स्त्री का मुंह नहीं देखा, स्त्रियों के निकट नहीं आऊं, तेरे तो तैया अच्छी भक्तनी है, देख इसका भी हाथ ना जलता है उबड़ते हुए पानी से मेरे ऊपर गेर नवाण लाग रही है, तेरा कलदा पाट गया इतनी दूर ते बना फिर मेरे सी कहते हैं इन इंद्रियों के कसने से हठ योग से इन पर थोड़ा बहुत तूने काबू पा भी लिया कुछ दिन के लिए, इसे बनेगा क्या तेरा? सुखदेव समझ गया सारी कहानी, तेरे ऊपर सारी बात हो रही है। तो कहने लगे बेटा अब तो महर्षि पक्के फिरे था जब वो लड़की तेरे पास बैठी तेरी चार पाई पे, तो उस तो दूर के हो गया भूतनी थी वातने खा ले हो, जब तू ज्ञान था आत्म तत्व तेरे तत्व आत्म ज्ञान भी था तो भी इतने ऐसे नहीं करना चाहिए था, बेटी है बहन है बैठ साथ में, आप जैसे पुण्यात्मा हो आत्म ज्ञान होने के बाद आपको अंतर नहीं लगेगा, कैसे जैसे पहले सांग होया करते गांवों में सांग, जैसे आजकल ये फिल्म बनती है ऐसे वो सांग करते थे, नकली राजा बनते थे, कोई प्रेमी बनता था कोई प्रेमिका, तो मनुष्य ही स्त्री का रोल करते थे। तो एक जवान लड़का बिल्कुल दाढ़ी मूछ रहित 12-13 वर्ष का 16 साल का, और वो सांग में एक लड़की का रोल कर रहा था, सारे अंग कृत्रिम लगा रखे थे, एक साथी अपने साथी एक व्यक्ति एक लड़का अपने साथी को साथ ले गया, कहा जा सांग देख कहाँ। जब वो गाना बजाने शुरू हुए तो वो पहली बार गया था, वो कहता देख कितनी सुंदर लड़की है, ओहो कैसे डांस कर रही है, वो लड़का कहता है कि लड़की नहीं है ये तो लड़का है, बोला नहीं लड़की है लड़का है, तो ना उसका विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे ढंग से मेकअप कर रखा था। फिर वो कहीं एक घर में गांव में नगर में चौपाल में रुके हुए थे धर्मशाला में, तो वो लड़का उसको वहां लेकर गया उनके पीछे पीछे, सांग समाप्ति के उपरांत उस दिन का जो कार्यक्रम उनका समापन हो गया था, तो वहां जाते उस लड़के ने अपने सारे अंग काट निकाल के धर दिए, वो लगा रखे थे जो ब्रेजर वगैरह नकली, वो लड़का का लड़का, तो बोलो कह रहे सचे लड़का है भाई। अगले दिन फिर गया वो सांग देखने, वो खूब उसी तरह मेकअप कर रखा था लड़के ने, लड़की का रोल था पर उसका कति मन में नहीं आई वो लड़का है लड़की है। तो आत्म ज्ञान होने के बाद ये ऊपर कवर दो डाल रखे हैं, आत्मा अंदर एक जैसी है। तो सुखदेव ऋषि को कहा व्यास उसने जनक जी ने, तेरा ज्ञान तो टट्टूगा नहीं है, बात बना खड़ा ब्रह्मचारी, जब आत्मा के अंदर तुझे ये ज्ञान हो गया कि स्मर मेरे मंत्र क्या है, तो तुमने सुकड़न की जरूरत ना थी बच्चा, कान पकड़ लिए उसने न बोला महाराज इतना ज्ञान था मेरे पास तो फ्यूज हो लिया मत, अब मुझे नाम दे दो कल्याण हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं अब सुखदेव ऋषि को राजा जनक से उपदेश मिला, और फिर वो कहां तक पहुंचा स्वर्ग में, आगे पाछे नीम तले इनका जितना भी उठा, यहां से स्वर्ग में, स्वर्ग में अपनी मलाई खत्म करके फिर नरक में, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि में, और फिर कभी दाव लगे मनुष्य जीवन का तो फिर हुआ प्रोसीजर शुरू। तो परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ये कोई ये भी मान ले ये भक्ति भी की गुरु भी बनाए और फिर भी यही धक्के खाए, तो इसके लिए हमने सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, और उस सतगुरु के पास वो पूरा प्रोसेस होता है पूरा ट्रीटमेंट होता है। जैसे पार्वती जी को केवल 5 नाम प्राप्त हुए, उनकी भक्ति शक्ति से उसकी आयु इतनी एक्सटेंड होगी जब तक भगवान शिव रहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी, और शिव जी की मृत्यु होगी इसकी भी मृत्यु होगी, दोनों 84 लाख योनि हो जाएंगे। ये भी अब ये भी गुरु थे, राजा जनक भी गुरु थे, और गुरु बनकर वो उपदेश दीक्षा भी देते थे जैसे सुखदेव को दिया। फिर वही राजा जनक पहले जन्म त्रेता युग में राजा जनक थे, सतयुग के अंदर ये कौन थे, ये राजा अम्बरीश थे और भक्ति करते थे। राजा अम्बरीश के सामने दुर्वासा जैसे शुद्ध पुरुष भी हार मान कर गए थे जब ये सतयुग के अंदर भक्ति करते थे, राजा भी थे, और अपने पुनों को स्वर्ग में खत्म करके ये फिर क्या बने, नानक जी का जन्म, नानक जी के रूप में जन्म हुआ, श्री नानक देव जी के रूप में तलवंडी में। और फिर पहले तो राजा थे, इनके नौकर हजारों नौकर होते थे, और वही आत्मा फिर श्री नानक देव जी के रूप में सुल्तानपुर शहर के एक नवाब के यहाँ स्वयं नौकरी कर रहे थे। उस समय परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा उस परम अक्षर ब्रह्म ने अकाल मूर्त ने सतपुरुष ने आकर वो आत्मा संभाली, उनको सतलोक सचखंड से परिचित कराया, फिर वापस छोड़ा, और तब सतनाम ये सारे मंत्र दिए, पांचों मंत्र भी दिए, फिर सतनाम दिया, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। पहले वो स्वयं गुरु बनकर औरों को ज्ञान देते थे जनक रूप में, और फिर स्वयं भी यहीं भटक रहे थे। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से, पूर्ण तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाने से ये सभी झंझट मिट जाते हैं। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव जैसे मैं ऋषि वो साधना कर कर कभी ऐसी विरान माटी हुई गदा बनिया, अब तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग, वो पूर्ण मोक्ष मार्ग, यानी तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर, तब तेरा यहाँ से पूर्ण रूप से छुटकारा होगा और मोक्ष होगा। और यहाँ के जितने यादगार हैं इनमें जाने से केवल उन भगवानों की याद अवश्य आती है कि यहाँ क्या क्या घटना घटी थी, वहां भगवान नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आप जी को वो संत खोजना पड़ेगा। कौन सा जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, उसकी वाणी में लिखा, उसको कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है, उस तत्वदर्शी संत से सुनो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताएगा, वह वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब प्रसाद वितरित होगा, प्रसाद पाओ, भोजन पाओ, फिर दर्शनार्थ आओ। सत साहिब।